रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। धनुष तोड़ दिया भगवान ने और धनुष टूटने के बाद जनक जी महाराज के उस राजसभा में एक अद्भुत वातावरण पैदा हुआ। जनक जी के मन में कितना शोक था, कितना दुख था, तो जनक जी महाराज तो बहुत आनंद में डूब गए और दूसरे जो राजा लोग थे वे राजा लोग अंदर ही अंदर घबरा गए। इधर सीता जी को राम जी के पास पहुंचने के लिए आज्ञा दी जा रही, सखियां बोलती चलो राम जी के वहां। संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगल चार गवनी बाल मराल गति सुषमा अंगय पार। बहुत बढ़िया प्रसंग है। हो सखियों के साथ में सीता जी बहुत लज्जा के साथ, बहुत प्रेम के साथ, इतने बड़े बूढ़े उनके सामने चलना भी तो एक संकोच है, उनके साथ में चलूं। चारों तरफ से सखियां गिरी हुई है, थोड़ी धीरे धीरे चलती है और भगवान के प्रति अपार प्रेम है, उस प्रेम के भार से भी धीरे धीरे चल रही है सीता जी। गवनी बाल मराल गति, जैसे कोई छोटा हंस होता है यो धीरे धीरे चलता है, ऐसे सीता जी चलती है। सीता जी अपनी सखियों के बीच में कैसी मालूम देती है, जैसे अनेक शोभाओं के बीच में एक महाशोभा चलती हो। हाथ में यूं जयमाला लिए हुए है, ये जयमाला नहीं है, वास्तव में संपूर्ण विश्व के ऊपर जो विजय की जाती है उसकी शोभा मानो हाथ में लेकर चल रही है। बहुत उत्साह है सीता जी के, गूढ़ प्रेम लखी परई न काऊ। गूढ़ प्रेम कोई जान नहीं सकता है सीता जी का, इतना गूढ़ प्रेम है। उस प्रेम से नेत्रों में आंसू आते हैं, वो आंसू भी वो निकलने नहीं देती है, अंदर ही अंदर आंसुओं को पी रही है, गूढ़ प्रेम है। धीरे धीरे चलते चलते जो ही राम जी के पास पहुंचती है और राम जी की शोभा देखती है तो चित्र में जैसे आंख खुली रह, ऐसे खुली खुली रह जाती है। रही जनु कुमारी चित्र अवर एक ही, जैसे किसी ने चित्र में उनको अंकित किया है। सीता जी भूल गई कि मैं यहां क्यों आई। देखो प्रेम गली अति साकरी तामे दोन समाए, ये प्रेम का रास्ता, भगवान के प्रेम का ऐसा रास्ता है इसमें दो चीज दूसरी चीज आती नहीं। सीता जी को तो केवल राम जी दिख रहे हैं, ये मन में आ ही नहीं रहा है कि धनुष तोड़ दिया, मैं जयमाला पहनाऊं, ये कुछ भी मन में ही नहीं आ रही है, उनको ध्यान ही नहीं है। तो जो समझदार सखियां हैं उन्होंने कहा, सीता हाँ हाँ पहरा बहु जयमाल, ये जयमाल में पहराओ ना, पहराओ। तो जो सुनत जुगल का हो, अच्छा अच्छा हो, सीता इतनी प्रेम में डूब गई, अब हाथ में जयमाला भी ले ली और प्रेम विवश पहरा ही न जाए। अब यू प्रेम यू करे ना, प्रेम विवश पहरा ही न जाए, प्रेम ही प्रेम छा गया, दूसरी क्रिया होती नहीं, वो जयमाला पहरा ही नहीं जाती। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं उसने हाथ तो ऊंचे कर लिए, यू नहीं किया जा सका। जिस समय हाथ ऊंचा किया सीता जी ने, तो सब सखियों से ऊंचा उनके दोनों हाथ गए। सोहत जनु जुग जलज सनाला, उस समय ऐसा लगा कि ये हाथ तो है फूल और ये है नीचे कमलनाल, यू ऐसे लगने लगा। सोहत जानुजुग जलज सनाला, ससी सभीत देत जयमाला, मानो चंद्रमा को ये जयमाला दे रहे हो। कमल होता है उसका सनाल, जो कमल है वो चंद्रमा को देखकर खुश होता है। तो ये हाथ है ना, इनके हाथ ही तो चंद्र, ये है फूल, ये सनाल, और ये ब्राह्म जी का मुख है वो चंद्रमा के समान, यू देने लगी। गावई छवि अवलोक की सहेली, उनकी सहेलियां ये सुंदर स्वरूप देखकर बड़ी, वो भी मग्न हो गई। पहले सीताजी मग्न हुई, अब ये मग्न हो गई। देखो सीताजी तो मग्न हुई थी राम जी को देखकर, और सहेलियां मग्न हुई है राम और सीता दोनों को देख करके। फिर भी सीताजी भूल गई क्या करना है, तो कह रहे सीताजी जयमाला पहनाओ, तो तब फिर सी जयमाल राम उर मेली, राम जी के गले में जयमाला पहना दी। जो ही जयमाला पहनाई, रघुवर उर जयमाल, देख देव बर सही सुमन, सकुचे सकल भुवाल, जनु बिलो की रवि कुमुद गन। क्या उपमा देते हैं, जैसे सूर्योदय हो जाने के बाद कुमुदगढ़ वो मुरझा जाते हैं, ऐसे जो ही सीता जी ने राम जी के गले में जयमाला डाली, वो दुष्ट राजा लोग जो भुजा के ऊपर यो ताल ठोक रहे थे, वे सब मुरझा गए। सकुचे सकल भुवाल, जैसे कोई सूर्य के उदय हो जाने पर कमिलियों का समुदाय चुप ही हो जाए, सबके मुंह उतर गए। और इधर खूब आकाश में गाजे बाजे बजने लगे, बड़े राजी हुए। खल भय मलिन साधु सब राजे, वहां तो सब प्रकार के रहते हैं भाई, दुष्ट भी थे, वो तो मलिन हो गए, संत लोग बड़े प्रसन्न हुए। देवता किन्नर नर नाग मुनि सब जय जयकार करने लगे, खूब आशीर्वाद मिलने लगे, खूब लोग नाचने लगे गाने लगे, खूब फूलों की बार बार बरसाते होने लगी। ब्राह्मण लोग वैदिक मंत्र का उच्चारण करने लगे, बिरदावली वो बंदी लोग बिरदावली गाने लगे। सारे पृथ्वी के ऊपर आकाश में पाताल में सब जगह एक आनंद ही आनंद छा गया। और ये हल्ला हुआ कि राम मरी सीए भंजेउ चापा, राम मरी सीए भंजेउ चापा। राम जी ने सीता जी का वरण कर लिया और शंकर जी का धनुष तोड़ दिया। ऐसे ऐसे सब बड़े आनंद हो रहे हैं, लोग यूं मोहरे के मोहरे उछाल रहे हैं। उस समय राम और सीता जी की ऐसी जोड़ी लगी है जैसे कोई श्रृंगार और छवि एक जगह आ गई हो। श्रृंगार और छवि, श्रृंगार तो है राम जी, छवि है सीता जी। अब सखियों ने कहा, सीता हाँ क्या बात है, पति के चरणों का स्पर्श करो। मन तो करता है चरण का स्पर्श करने का, पर यू डरती है वो, अब वो चरण स्पर्श के लिए हाथ बढ़ाती है, फिर डरती। क्यों? उनको याद आ गया, अरे गौतम जी की पत्नी थी वो इनके चरण के स्पर्श से पत्थर से स्त्री हो गई, और मैं यदि स्पर्श करूंगी तो स्त्री से पत्थर हो जाऊंगी। ये दो ही बात करते, या तो पत्थर से स्त्री या स्त्री से पत्थर। तो करति न चरण परस अति भीता, बहुत डर गई सीता जी। गौतम तिय गति सुरति करी नहीं परसति पग पान, मन विहसे रघुवंश मणि प्रीति अलौकिक जान। देखो सीता जी जानती थी कि मैं कौन हूं, राम जी कौन है, पर बताया था ना कि ये माधुरी रस ऐसा है जिसमें भगवान के ऐश्वर्य को भूलने से ही माधुरी रस मिलता है। माधुरी रस माने प्रेम रस, जहां प्रेम होता है वहां विशेषता नहीं देखनी चाहिए, विशेषता देखते वहां प्रेम नहीं होता है, वहां विशेषताओं से प्रेम होता है। तो गौतम की गति को याद करके सीता जी चरण स्पर्श नहीं करती, राम जी महाराज हंसने लगे। देखो गौतम की गति को, गौतम स्त्री की गति को देखना ये ऐश्वर्य में जाना नहीं है कि नहीं भाई मैं तो चरण स्पर्श नहीं करूंगी, क्या पता पत्थर बन जाऊं, इनके चरण बड़े ऐसे ही है, ये अलौकिक प्रेम है। अलौकिक, इस अलौकिक प्रेम को भगवान समझ गए, भगवान हंसने लगे। अब इधर जो है सीता जी को देख करके जो राजा लोग सीता जी के रूप पर मोहित हुए हुए थे वे आपस में विचार करने लगे। बड़े कपूत राजा लोग, बड़े क्रूर, उन्होंने विचार किया, ले उछड़ाओ सीके को, जाओ सीता जी को छुड़ा लो, क्या है सीता, क्या है राम, इन दोनों बालकों को पकड़ करके यहां खंभे के बांध दो, धरी बांधे उन्द्रिप बालक दो, और कोई धनुष चढ़ा, धनुष तोड़ दिया, धनुष चाड़ माने तोड़ना, धनुष को इन्होंने तोड़ दिया तो क्या हो गया, कोई संसार को जीत लिया क्या, तोरे धनुष चाड़ नहीं सरई जीवत हमई कुंवर को मरई, धनुष तोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं है कि सारे संसार को जीत गए हो, ये जीवत हमई, अरे हमारे जीते जी ये कुंवरी का वरण कर लेंगे, सीता जी को ले जाएंगे, नहीं कुछ नहीं हो, बांध लो इसको, पकड़ लो इन दोनों को पकड़ लो, और ये जनक जी सहायता इनकी करेंगे, जनक जी तो इन्हीं की सहायता करेंगे, जनक जी सहायता, जाओ जनक जी को, क्या होता है जनक जी जीता हूं समर सहित दो भाई, जनक जी को जीत ले, सारे राजा तो हम लोग यहां आ ही गए ना, इतने सूरवीरों के सामने जनक करेगा भी क्या, इसलिए इनको पकड़ लो। समझदार राजा नगर, क्या बात करते हो भाई, जरा आपको लाज आनी चाहिए, अपने मुंह से क्या बोलते हो, आपके अंदर इतनी सूरवीरता है, अरे आपकी सूरवीरता, आपकी लाज, आपकी शर्म, आपका तेज, आपका यश, ये तो सब का सब इस धनुष के अंदर ही चला गया, धनुष आपसे टूटा नहीं, और राम और लक्ष्मण को तुम बांधना चाहोगे, सोई सूरता की अब कहू पाई, अरे तुम्हारी सूरवीरता धनुष में चली गई और अब तुम्हारे अंदर क्या सूरवीरता नहीं पैदा हो गई भी जाकर के तुम राम लक्ष्मण को बांधोगे, असी बुदी तो विधि मुंह मसीलाई, यदि ऐसी तुम्हारे अंदर सूरवीरता आई है तो पहले अपने मुंह के ऊपर स्याही पोत करके फिर कांच में देख के आओ कि हम कैसे है, अरे देखना तो आपको ये चाहिए कि देखो राम ही नयन भरी, राम जी को दर्शन करो ना, क्यों इनसे तुम ऐसी बात करते हो, ईर्ष्या है, मोह है, क्रोध है, प्रतिस्पर्धा, ये सब छोड़ के राम के कितने दर्शन ये करो, और नहीं तो लक्ष्मण रूपी आग के अंदर तुम पतंगों के समान जल करके भस्म हो जाओगे, तुम राम जी को पकड़ोगे, लक्ष्मण जी को पकड़ोगे क्या, गरुड़ है उसका जो हिस्सा है उसका हिस्सा कभी कौवा, कौवा देखता मैं ले जाऊं इस गरुड़ का हिस्सा, अरे वो गरुड़ है, गरुड़ पक्षीराज है, और तू क्या है, तू पक्षी चंडाल है, सबसे नीचा पक्षी कौवा पक्षी राज गरुड़ का हिस्सा ले सकता है क्या? नहीं ले सकता। और जिमी ससु चाहे नाग अरि भागु, और कोई खरगोश या सिंह की चीज लेकर के भगना चाहे, अरे वो सिंह है ये दबोच लेगा तुझे। और जैसे कोई सब आदमियों से बिना कारण लड़ाई करने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं कुशल पूर्वक रह सकूं, कुशल पूर्वक कैसे रहोगे भाई? सबसे खटपट करने वाला आदमी कभी कुशल पूर्वक नहीं रह सकता। और जो भगवान शंकर के साथ द्वेष करता है, वो चाहता है कि मुझे खूब संपत्ति मिले, धन मिले, ऐश्वर्य मिले। अरे ऐश्वर्य मिलता है शिव जी की आराधना करने से। लोभी ललुप कल कीरति चाहे, और एक लोभी आदमी है, लोलुप आदमी है, वो संसार में अपनी कीर्ति चाहता है। कीर्ति करते हो तो अंदर से लोभ का त्याग करो भाई। बड़े बड़े लोग हुए, कुएं बावड़ी वगैरह बनाए, लोगों के उपकार में चीजें लगाई, तो उनकी सब कीर्ति गाते हैं। और लोभ अंदर रखोगे कि भाई मेरा खर्च न हो जाए, तो भाई वो कीर्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। और अकलंकता की कामी लय, और जो कामी पुरुष है वो सोचता है कि मेरी निंदा न हो, मैं निष्कलंकित होकर रह जाऊं, कोई मेरे लिए कुछ टीका टिप्पणी न करे, ऐसा संभव नहीं है। हरिपद विमुख और परम गति चाह, भगवान का भजन करे नहीं, भगवान के चरणों में प्रेम रहे नहीं कि मेरा कल्याण हो जाए। कैसे कल्याण हो जाएगा? कल्याण की तरफ पैर ही नहीं रखा। हम बैठे बैठे सोचें कि हम बीकानेर जाए, वही बीकानेर जाने के लिए गाड़ी में बैठो कुछ रवाना, तो वो रवाना ही ना होए। हरिपद विमुख और परम गति चाह, ऐसे राजाओं तुम लोगों का ये संकल्प, ये तुम्हारा लालच ऐसा ही निरर्थक लालच है। किसी ने कहा कि हम मारेंगे, किसी ने कहा हम नहीं मारने देंगे, इन दोनों बच्चों की हम रक्षा करेंगे। कोई इधर कोई इधर कोई इधर, ये आपस में कोलाहल होने लगा। तो सीता जी बिचारी हुई सकी तो ये देखने लगी क्या हो गया, सी कोलाहल सुन सी सकानी। तो उन सखियों ने कहा चलो चलो, ये तो लड़ाई झगड़े का काम तो राजाओं का अपना नहीं, चलो 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 उधर चलो चलो में चले गए। इधर राम जी महाराज अपने गुरु जी के पास आए और अपने मन के अंदर सीता जी का स्नेह रखे हुए गुरु जी के पास आए। इधर कोलाहल बढ़ता जा रहा है, रानी सुनैना जी वो भी बड़ी चिंतित हो गई, सीता जी भी चिंतित हो गई। अब दो विधि कहा करनी या, अब ये विधाता और क्या करने वाला है कुछ समझ में नहीं आया। भूप वचन सुनी इत उत तकई, लखन राम उन्नर बोली न सकई। कई राजा लोग हैं वो इधर उधर ताकते तो है, पर राम लक्ष्मण के डर कारण से वो कुछ बोल नहीं सकते हैं। लखन राम डर बोल नहीं सके। देखो लक्ष्मण जी है ना, लक्ष्मण जी उनको पता चला कि राम जी के विरोध में बोल रहे हैं, तो वो मन में तो आया धनुष बाण लेकर के लड़ाई करूं, पर राम जी का डर बैठ गया उनके, राम जी का डर बैठ गया, इसलिए लक्ष्मण जी महाराज राम जी के डर से कुछ बोले नहीं, क्रोध आया पूरा। देखो पूरे रामायण में आप देखो लक्ष्मण जी को जहां भी क्रोध आया है, लक्ष्मण जी बोले हैं, वहां लक्ष्मण जी का कहीं सटीक क्रोध हुआ है, सटीक क्रोध हुआ है, परंतु भरत जी के सामने उनका क्रोध सटीक नहीं था। तो उसमें लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी ऐसा क्यों किए, वो प्रसंग ही अलग है, तो उसमें राम जी का अतिशय प्रेम है हमारे लक्ष्मण जी के मन में। जिस क्रोध से किसी की आत्मा जले ना, वो क्रोध खराब होता है। अब देखो माँ बाप है वो बच्चे को डांटते हैं, तो बच्चे के मन में बड़ा होता है तो असर आता है कि अच्छा किया, मेरी माँ मुझे कान पकड़ के पढ़ाती थी, पिताजी डांटते थे, थप्पड़ लगाते थे, गुरुजन थप्पड़ लगा देता, आज हम पढ़ लिख लिए। तो जिस क्रोध से अगले के मन में प्रसन्नता होती हो और उसका हित होता हो, वो क्रोध बांधने वाला नहीं होता। तो राम जी और भरत जी और लक्ष्मण जी चित्रकूट में दोनों अलग अलग कमरे में मिले, अलग जगह मिले, कमरा तो नहीं था, वहां अलग जगह मिले। लक्ष्मण जी ने कहा, भरत जी मेरे से तो बड़ी भारी गलती हुई, मैंने सोचा कि आप तो राम जी को मारने के लिए आ रहे हो, तो मैंने धनुष ताण लिया। मैं यदि वहां बाण छोड़ देता ना तो तुम्हारे कलेजे में लग जाता और मेरे से पाप हो जाता, तो बड़ी भारी गलती हो जाती, मैं तुम्हारे पैरों में पड़ता हूं, मुझे क्षमा करो। तो भरत जी ने कहा कि अरे लक्ष्मण, तूने यही गलती की कि मेरे बाण लगाए नहीं, मेरे कितनी तकलीफ हो रही वो मैं जानता हूं, और आगे 14 वर्ष तक ये राम जी वन में रहेंगे मैं ही जानता हूं मेरे मन में कितनी तकलीफ होगी। तुम बाण मार देते तो बाबा हमारे तो हम निहाल हो जाते। ऐसे करते करते लक्ष्मण जी की भरत जी की बातें हुई, तो उन बातों में भरत जी महाराज बहुत प्रसन्न हुए लक्ष्मण जी की बात सुनकर के, तुम राम जी के अन्य निष्ठावान हो। चाहता तो मैं था कि मैं तुम राम जी के साथ जाऊं, पर मैं राम जी के साथ जाने लायक नहीं हूं, तुम ही जाने लायक हो। जब तुम पिता को कठोर शब्द कह सकते हो, जब तुम मेरे लिए बाण लगा सकते हो, अब मुझे विश्वास हो गया कि राम जी की सेवा में अब कोई बाधा नहीं आ सकती, कोई बीच में नहीं बोल सकता। वे लक्ष्मण जी महाराज बड़ा सटीक क्रोध करते हैं, तो भूप वचन सुनी इत उत तकाई लखन। राजाओं के वचनों को सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर देखते, कौन क्या किसकी हिम्मत हुई है, ऐसे थोड़ा वो देखने तो लगे, लेकिन राम जी का डर राम जी पास में है कि भाई बड़े लोग पास में रहते हैं, छोटी अपनी बहादुरी कैसे दिखाए, तो बोले नहीं। लेकिन उनकी स्थिति क्या हुई, अरुण नयन भ्रिकुटी कुटी लाल, आंखें लाल हो गई, भौवे उनकी चढ़ गई, चितावत नृपन्न सको। सब राजाओं को क्रोध से देखने लगे, ऐसा लगा मनहुमा तगज गननी रखी सिंह किशोर ही चोप, जैसे कोई एक सिंह किशोर छोटा सा सिंह का बालक बहुत से हाथियों को देख करके क्रोध करता है, यूं देखता घुर्राता है, ऐसे लक्ष्मण जी घुर्राने लगे। खरबर उदय की विकलपुर नारी, ये सब खलबली देखी तो सब लोग जो है इधर उधर विकल होने लग गए। सब मिले दे निपन महीपन गारी, जो जनकपुर के लोग थे वो सब राजाओं को भला बुरा कहने लगे, तुम कैसे लोग हो भाई, स्वयंवर में कोई एक ही जीतता है, जो जीत गया उसको जीतना ही मानना चाहिए, आप लोग क्यों इतना लड़ाई झगड़ा करते हो, ऐसी ऐसी लोग बातें करने लगे। तुलसीदास जी महाराज कहते, तेई अवसर हाथापाई हुई नहीं, तेई अवसर सुनी शिव धनु भंगा आयो भृगुकुल कमल पतंगा। अब भृगुवंश रूपी कमल के पतंगा माने सूर्य, ये परशुराम जी महाराज आ गए, परशुराम जी आ गए। आप जो है सब राजा लोग संकोच में पड़ गए, बाज झपट जनु लवा लुकाने, जैसे बाज है वो पकड़ता है लवा को पकड़ता है तो इधर उधर वो छिप जाता है, ऐसे राजा लोग इधर उधर छिप गए हूं। और अब परशुराम जी महाराज का गोरा शरीर है, विभूति लगाई हुई है, बड़ा लंबा चौड़ा ललाट है, और त्रिपुंड उनके ही त्रिपुंड लगाया हुआ है, जो शैव लोग होते हैं वो त्रिपुंड लगाते हैं। देखो परशुराम जी महाराज वैष्णव अवतार लगाते त्रिपुंड है, बाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषि बस कछुक अरुण हो आवा, सिर के ऊपर जटा है और शशि बदन सुहावा, चंद्रमा जैसा उनका सुंदर मुख है, लेकिन कुछ लाल लालिमा भी आई हुई है क्रोध के कारण से, आंखें उनकी बड़ी टेढ़ी हुई हुई है, लाल लाल हुई हुई है भ्रिकुटी, और ऐसा लगता है सहज वो चितवत मनो रिसाते, वे देखते तो स्वाभाविक ही है, उनकी दृष्टि यही ऐसी, लोगों को ऐसा लगता है जैसे बड़े क्रोध में है, वो क्रोध में है लेकिन क्रोध में नहीं है, दिखते क्रोध में है। सहज चितवत स्वाभाविक देखते हुए भी क्रोध में लगते हैं, ऐसे ये आए परशुराम जी महाराज। अब देखो परशुराम जी महाराज भी कैसे, राम जी के तो एक तुनीर है, इनके दो तुनीर है, कटिमुनि वसन तून दुई बांधे, दोनों तरफ ये तुणीर यामी तुणीर यामी तुणीर, धनुष है उनके, धनुषर कर कुठार कल कांधे, धनुष है बाण है ये फरसा है, ऐसे सब इन्होंने बांध रखे हैं अपने यहां। अब ऋषि मुनियों का सभी जटाधारी तो हुए है और जो है मृगशाला पहन रखी है और सब शस्त्र ले रखे हैं। शांत वेश करनी कठिन वर्णि न जाए स्वरूप, धरी मनि धरी मुनि तनु जनु वीर रस आयो जय सब बु, ये वीर रस ही मानव शरीर धारण करके आ गया। अब सब राजा लोग जो है उठे आए और अपने बाप का नाम ले ले करके कि मैं गया प्रसाद का बेटा चुन्नीलाल आपको प्रणाम करता हूं, ऐसे सब अपने बाप का नाम ले लेके नाम ले ले, पितु समेत कई कई निज नामा, पिता के साथ में अपने बाप का नाम लेते हुए अपना नाम लिया, आपको प्रणाम आपको प्रणाम। अब जो इनको इतनी टेढ़ी मेढ़ी आंखें देखी ना, तो भाई उस समय में और राजा लोगों ने देखा अब ठीक है, अब ठीक है, ये अब अपने को तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, ये ठीक आ गए। इसी समय जनक जी महाराज आए, जनक जी महाराज ने आकर के प्रणाम किया और सीता जी को बेटा तुम भी आओ प्रणाम करो। अब सीता जी को आशीर्वाद देने लगे, जाओ बेटा तुमको ऐसा पति मिलेगा जो संसार में सबके ऊपर विजय प्राप्त करेगा, सबके ऊपर उसका शासन चलेगा, तुम्हारा पति ऐसा श्रेष्ठ होगा, ऐसे करके खूब आशीर्वाद दिए, आशीष दीन सखी हर्षानी, और निज समाज ले गई साहब, चलो चलो अपने चलो अपने चलो, यो करके सीता जी को ले गई। इतने में विश्वामित्र जी ने कहा अरे आशीर्वाद मिल रहा है, आओ आओ राम लक्ष्मण को बुलाया आओ, अरे प्रणाम करो ये भृगुवंश के सूर्य हैं। तो दोनों ने प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को और परशुराम जी ने देखा ये कौन है, राम लखन दशरथ के दोठा, हे परशुराम जी ये राम और लक्ष्मण है दशरथ के पुत्र हैं, अच्छा 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 बहुत अच्छे लगते हैं ये। दोनों को आशीर्वाद दिया कि बेटा तुम्हारी सदा विजय होगी, किसी से तुम परास्त नहीं होगे, चाहे कोई आ जाए तुम्हारे सामने सब पर तुम्हारी विजय होगी। राम जी को कई देर तक देखते रहे, रामई चितई रहे थकी लोचन, निर्मिमे से आंख खोल गए, बड़ा सुंदर रूप है भाई इसका, रूप अपार मार मद मोचन, मार मान कामदेव, कामदेव का भी घमंड दूर करने वाला इसका रूप, ओहो बड़ा आनंद आया उनको देख करके, सबको देख करके आनंद तो आ गया। अब उनके अंदर जो क्रोध था उस क्रोध से बोले, बहुरी बिलो कि विदेह सनाए जनक, बताओ ये किस बात की भीड़ हुई है, कोई मर गया तो कोई रो नहीं रहा है, और कोई शादी विवाह है तो कोई मंडप नहीं है, यही दो ही होते हैं मरण और परण, ये भीड़ काहे की हो रही है। वो सब जान रहे हैं परशुराम जी महाराज, फिर भी वो अनजान बने हुए से पूछ रहे हैं, शरीर उनका तम तमा रहा है, क्रोध के अंदर कांप रहा है। जनक जी महाराज जी हूं बेचारे घबराते घबराते गए, महाराज अपने पास में शिव धनुष रखा हुआ था, उसका स्वयंवर होता ही रहता है, स्वयंवर किया और स्वयंवर करने पर सीता जी का विवाह का ये उपक्रम है, इसीलिए राजा लोग आए हैं। उन्होंने यूं देखा, जनक जी को देख करके शिव जी के दोनों, शिव जी के धनुष के दोनों टुकड़े देखे, कई देर तक उन टुकड़ों को देखते रहे, देख ही चाप कंड मई डारे पड़े हुए थे, ए मूर्ख जनक इस इतने बड़े राजसभा के अंदर किस व्यक्ति ने इतना बड़ा अपराध किया, मुझे जल्दी नाम बताओ, नहीं तो मूर्ख जनक जहां तक तुम्हारा राज्य है उस सारी पृथ्वी को मैं उलट पुलट कर दूंगा, तुम्हारा कोई प्राणी अब जीवित नहीं बचेगा, तुम हमारा क्रोध नहीं जानते हो, बताओ वो कौन व्यक्ति है। और राजा तो कुछ बोले, इतने डर गए महाराज जनक जी, इतने डर गए, वो बहुत डर गए वो राजा लोग, सो अब अच्छा हुआ, अब अच्छा हुआ, कुटिल भूप हर्षे मन माई, वो राजा ने अब ठीक है, अब ठीक है। अब बिचारे सब ऋषि मुनि देवता नाग नगर नर नारी ये सब के सब संकोच में पड़ गए। अब क्या होगा, अब क्या होगा। सीता जी की मां पछताने लगी कि हे विधाता, तू करता क्या है, बिगड़ी हुई बातों को सुधारने में तेरा नाम है लेकिन सारा काम हमारा सुधर गया, ये कहां बिगाड़ रहा है तू, विधि सब समरी बात बिगारी। सीता जी भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता, सीता जी ने परशुराम जी महाराज का स्वभाव सुना। अब सीता जी ने किससे सुना, गुसरु पुसर करते हुए सखियों से सुना। तब उनका अर्ध निमेश कल्प सम बीता, थोड़ा सा ही ये एक निमेश होता है चुटकी बराई, इसका भी आधा हिस्से के समान कल्प के समान उनका समय में थोड़ा सा भी समय बड़ी घबराहट में बीता। देखो सुख का समय होता है ना, वो लंबा समय भी ओछा होता है, और दुख का समय होता है वो छोटा होता भी बहुत बड़ा मालूम देता है। सब लोग डर रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कोई बोले। और जब देखा कि जानकी जी की आंखों में यूं आंसू से आ रहे हैं, वो डर रही है, तब बिना किसी हर्ष के और बिना किसी डर के भगवान राम जी आए और बड़े आदर के साथ कहने लगे, नाथ शंभु धनु भंजनी हारा हो यहु केहु एक दास तुम्हारा। हे महाराज, हे नाथ, हे स्वामिन, आपके धनुष से शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास ही है, बोलो क्या आज्ञा है, मुझे बताइए उसके लिए क्या आज्ञा है। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, इस एक वाक्य में भगवान ने सब बात कह दी कि हे परशुराम जी महाराज, आप हमको ये कहने के लिए आए हो कि ये धनुष किसने तोड़ा, आप पंचायती क्यों करते हो। शंभु धनुष शंकर जी का धनुष है, तो शंकर जी आकर के पूछे हमसे, आप बीच में क्यों बोलते हो, आप तो साक्षात विष्णु का स्वरूप हो। शंकर का धनुष है वो किसके द्वारा टूट सकता है, जो नाथ शंभु होगा माने जो शंकर का भी स्वामी होगा, शंकर भी जिसको स्वामी मानते होंगे, वही शंकर का धनुष तोड़ सकता है। सादर जपऊ अनंग वाराती, भगवान शंकर तो पार्वती जी को बता ही रहे कि मैं बड़े प्रेम से उनका नाम लेता हूँ, पार्वती जी भी बोलती है कि आप उनका नाम लेते हो उनके विषय में बताओ, तो भगवान शंकर तो हमारे दास है, तुम भी इसमें पंचायती करने वाले कौन। नाथ शंभु धनु भंजनी आ रहा, और नाथ शंभु, शंभु का अन्वय नाथ के साथ भी लग सकता है और शंभु का अन्वय धनुष के साथ भी लगता है। तो धनुष जो है ये धनुष है कि शंभु का धनुष ना, शंभु का धनुष नहीं है ये शंभु का तो मैं हूं, धनुष थोड़ा ही है, शंभु का तो मैं हूं। लेकिन वो इतने क्रोध में थे कि राम की बात समझ नहीं पाए, कहने लगे, अरे सेवक होता है वो तो सदा सेवा ही करने वाला होता है, शत्रुता का काम करने वाला शत्रु होता है, उसके साथ तो लड़ाई करनी चाहिए, अरे करी लड़ाई, हमारी सेवा की कि हमारे साथ शत्रुता की है। देखो राम, जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो आज मेरा बहुत बड़ा शत्रु है, सहस्त्र बाहु समसो रिपु मोरा, सहस्त्रार्जुन के समान मेरा शत्रु है, या तो उसको तुम अलग कर दो, तो सब राजाओं को मारता हूं, सबको मार दूंगा। लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी महाराज का अपमान करते हुए बोले, क्या बोले, धनुष को तोड़ने वाले को मारोगे, ये आज पहली बार क्या रीति देख रहे हैं महाराज, हमने बचपन में ऐसे बहुत से धनुष तोड़ी है, धनुष नहीं धनुई माने धनुषियां, छोटे छोटे धनुष बहुत तोड़े, आज तक हमारे पास कोई ऐसा क्रोध करने वाला व्यक्ति आया नहीं, ये एक पुराना सा धनुष राम जी ने ये एक पुराना सा धनुष तोड़ दिया, उसके लिए आप इतनी ममता कर रहे हो और इतनी आप रीस कर रहे हो, और आप भृगुकुल केतु भृगुवंश में जन्म लिए और उनमें श्रेष्ठ पुरुष हैं, आप आपको विचार नहीं आता है, ऐसा क्रोध करते हो, एक छोटा सा धनुष टूट गया कोई तो क्या हो गया इसमें। तो फटकार नगारे नृप बालक, क्या बोलते हो, जरा अपने मुंह को संभाल करके देख, तेरे मुंह में अभी तो माता का पियावा दूध लगा हुआ है, बच्चा है तो बच्चा मेरे सामने। भगवान शंकर के धनुष को सामान्य धनुष के बराबर मानता है। आज तक मैंने संसार में ऐसी बात नहीं सुनी जो तुम हमको सुना रहे हो, तुम्हें मालूम नहीं है हमारे विषय में। लक्ष्मण जी कहने लगे, महाराज हमने तो सुना है धनुष धनुष तो एक ही होता है, सब धनुष ऐसे ही तो होते हैं, ये धनुष एक जैसे ही होते हैं। अब ये शिव जी का धनुष, ये राम जी का धनुष, ये परशुराम जी का धनुष, ये इसका ये उसका, ये तो संसार में बहुत होता है। सारा संसार तेरे मेरे उसके के व्यवहार से भरा पड़ा है, क्या हो गया? धनुष तो धनुष ही होता है, पुराना सा धनुष यहां ला के रख दिया, बेचारे जनक जी ने अपना कोई मन बहलाव कर लिया। और यहां तो केवल राम जी ने यो नेत्र से देखा ही था उसको, लापरवाही से देखा, राम नैन के भोरे भोले भी नहीं देखा इसको, उठाया, उठाते टूट गया। देखो राम जी ने तो देखा, शब्द देखो लक्ष्मण जी के कितने चिढ़ाने के शब्द बोल रहे हो, कहा था कि लाभ जून धनु तोड़े, देखा राम नैन के भोरे, राम जी ने तो इसको नैन से देखा। और छुआ टूट रघुपति इन दोसु, इसको छुआ और इसको ये इतने में टूट गया, इससे रघुपति का कोई दोष नहीं, यहां यही कहना चाहिए राम जी का कोई दोष नहीं है। रघुपति शब्द कैसे दे दिया भाई, रघुपति शब्द दिया थोड़ा परशुराम जी को और क्रोधित करने के लिए, बिना मतलब आप क्रोध करते हो, थोड़ा आप विचार करो। कोई इसमें हम परिश्रम करते, कोई राजनीति लगाते, कोई षड्यंत्र रखते, कोई पंच पंचायतें इकट्ठी करते कि बड़ा भारी धनुष है साहब, अब ये कैसे तोड़ा जा सकता है, इसमें पहले आग लगाओ और पहले इसमें आरा लगाओ और फिर ये करो, बहुत से हम कुछ उपाय करते फिर टूटता, तो आप कहते भी इतने उपाय कैसे किए, छुअत टूट, ये तो उठाया रही टूट गया ये तो, अब इसको भी छूने से कोई टूटता, ये टूट गया सर, थोड़ा सा भी जोर लगाता भी बात नहीं, जोर भी नहीं लगाना पड़ा यहां तो। देख बालक, तू मेरे स्वभाव को जानता नहीं है, बिना जाने तो इतनी बात कर रहा है, मैं तो तुझे एक छोटा बालक समझ करके कुछ कह नहीं रहा हूं और तू केवल एक मुझे मुनि मान रहा है। मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बहुत क्रोधी हूं और क्षत्रियों के तो पीछे ही पड़ा हुआ हूं, मैंने कितनी बार क्षत्रियों से रहित करके पृथ्वी ब्राह्मणों को दी है, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी और विपुल बार मही देवन दीनी, और तुमने सुना कि नहीं, सहस बाव भुज छेदनी हारा परसु विलो की महीप कुमारा, सहसार्जुन को हमने मारा है, मालूम नहीं है बच्चे मेरा परसा कितना तेज है, हजार भुजाएं थी उसकी, हजार भुजे खट खट काट करके उसको नाश कर दिया उसका मैंने। क्यों अपने माता पिता के लिए सोच का कारण बनता है बालक, मेरी तो आवाज से ही गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में रहने वाले जो बच्चे होते हैं वो भी डर जाते हैं, वो भी मर जाते हैं, मेरे परस की जो आवाज होती है उसे जब चलता है आवाज होती है खर खर खर, तो उसकी आवाज से गर्भन के अर्भक दलन। लक्ष्मण जी आ हा हा ओ हो, हो, हो बड़ी महिमा बता रहे हो महाराज, आप अपने मुंह से बहुत महिमा बता रहे हो हमको, बार बार आप मुझे परसा बता रहे हो, जैसे कोई फूंक से पहाड़ उड़ा दोगे आप, हम पहाड़ है और आपकी बाड़ी फूंक है, आप हमको यही समझ रखा है। जब आप कहते हो कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, मैं अति क्रोधी हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही ऐसा कहते हैं, तो यहां महाराज यहां कुमड़ बतिया को नाई, यहां कोई कुमड़ का वो फल नहीं है, छोटा सा वो ये कोड़ा होता है ना, कोड़ा वो कुमड़ बोलते हैं, तो कोड़ा छोटा सा लगता है तो उसको कोई अंगुली दिखा दे तो फिर वो कवे ये फल गल गया, हम ऐसे नहीं है, यहां कुमड़ बतिया को ना ही दे तर्जनी दे कि डर जाए मर जाए, कुमड़ का फल है। देखो देखो हमारे यहां देखो फल लगा, उसको आंगली लगा दो फल के गल गया फल गल गया, कोई यूं करके बताते हैं, बचपन में किसी फल को बताते आंगली को यूं बताओ भाई उसको यूं ऐसे फल के बताते है ना, तो यहाँ कुमड़ बतिया कौ नाई, यहाँ कोई कुमड़ बतिया नहीं है, अर्थात कुमड़ का फल नहीं है जो तर्जनी देख के गड़ जाएंगे। बार बार हमको ये कुठार दिखाते हो, क्या बताएं महाराज, आप हमको तो बालक समझते हो और हम आपके गले में जनेऊ देख रहे हैं। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी, एक तो भृगुवंश में तो जन्म लिया है आपने, ये तो हमारे हृदय में बात बैठी हुई है, और जनेऊ हम आंखों से देख रहे हैं, इसलिए हम जो कुछ कह रहे हैं गुस्सा मार के बोल रहे हैं। आपको क्रोध आता है तो हमको नहीं आएगा क्या? हमरे कुल इन पर्ण सुराई, क्या बताएं, देवता हो ब्राह्मण हो भगवान के भक्तों और गाय हो, इन चार पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। इनके ऊपर क्रोध करने से बहुत पाप लगता है, बधे पाप अपकीरति हारे। यदि हम इनमें से किसी को मार भी दें तो पाप लगेगा, और इनसे हार जाए तो हमारी अपकीर्ति होगी। इसलिए बाबा आपको बार बार धोख देते हैं, पैरों में पड़ते हैं, ये क्रोध रो तो हटाओ, और ये फरसा क्यों रखते हो, आपके वचन ही इतने तीखे हैं, आपके वचन ही इतने कड़वे हैं, फरसा रखने की जरूरत नहीं है, धनुष बाण क्यों रखते हो, आपके वचन तो ऐसे ही मार देने वाले हैं, इसलिए आप क्रोध मत करो और हमको बाबा माफ करो, हो गया ऐसा माफ करो। देखो माफी माफी का एक ढंग होता है, अपने में असमर्थता पा करके गलती कसूर मान करके माफी मांगना अलग है, और एक पिंड छुड़ाने जा कर लो बाबा माफी दे, माफी मांगना थार से माफी मांगा, वो माफी मांगना तो एक तरह चिड़ाना, लक्ष्मण जी ने तो यही किया, अरे बाबा थाने मारना तो पाप लागी, निकल थे माफी चाहवा बाबा, थे जाने मारो माथो मत लगाओ, थानो माफी चाहवा। तो सुनी सरोज भृगुवंश मुनि बोले गिराओ, इतना क्रोध आया इनको, माफी नाम भी लेता है क्षमा नाम भी लेता है और ऊपर से हमको चिढ़ाता भी है। ए विश्वामित्र जी, हमको इसका इतना वचन सुनना अच्छा नहीं लगता, ये बालक कहां से लिया है तुम उठाकर, बहुत कुटिल है ये, काल के वशीभूत हुआ है, कितना अच्छा सूर्यवंश है, और सूर्यवंश रूपी चंद्रमा के लिए ये कलंक लग गया, कलंक, बड़ा निरंकुश है, मूर्ख है, निशंक है। काल कवलु होए में एक समय में इसको अभी मार सकता हूं, फिर आप मुझे कोई कुछ दोष मत देना, कोई मुझे कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि ओहो, आपका इस संसार में कोई दूसरा प्रशंसा करने वाला नहीं रहा क्या, कि अपने मुंह से आप अपनी बड़ाई करते हो। अरे कोई भी आदमी, छोटा सा भी आदमी होता है, अपने साथ में 8-10 आदमी रखता है, वो कहेगा साहब मिनिस्टर साहब आए हैं। अच्छा अच्छा, मिनिस्टर साहब खुद कहता है कि मैं मिनिस्टर साहब आया हूं, ये अमुक जगह के आए हैं, ऐसा खुद नहीं बोलते, दूसरे लोग बोला करते हैं, लेकिन क्या बताएं, अपने मुंह तुम आपनी करनी, तुम ही अछत को बरने पारा, तुम्हारे अलावा आपकी कोई प्रशंसा ही नहीं करता है, और बार बार हमको आप सुनाते हो तो सुनाते रहो और अपनी बड़ाई करो, पर इतनी बात कहते हैं, अपने मुंह से अपनी बात कहनी अच्छी नहीं लगती है, और ये गाली निकालते हो, क्रोध में बोलते हो, ये बात भी आपकी शोभा नहीं है, आओ तो युद्ध कर लो भले ही, सूर समर करनी करें, कहीं न जना वही आप। सूरवीर होता है वो बाणी से बात नहीं करता है, वो बाण से बात करता है। अपने सामने शत्रु को देख लिया और बड़बड़ाए, वो उसके पास बाण नहीं कि परसा नहीं, धनुष नहीं, तलवार नहीं, क्या नहीं, आपके पास सब है, आओ मुझे मारो ना आप पकड़ कर। बड़ाई तो इतनी करते हो जैसे आप काल को भी हाँक के ले आओगे, और युद्ध करते हुए आपको शर्म आती है, आपको लाज आती है, बार बार मोइला की बुलावा, मुझे बार बार डांटते हो आप। ऐसे महाराज हम डांट सुनने वाले नहीं है, परशुराम जी महाराज ने अपना परसु ले, ये ऐसे नहीं मानेगा, सुनो लोगों, अब मुझे कोई दोष मत देना, ये अपने जिस गले से कठोर शब्द बोल रहा है उसी गले के ऊपर मैं प्रहार करूंगा, ये बद के योग्य कोई मत बोलना। सुनिए विश्वामित्र जी, हमने आपकी तरफ से बहुत विचार किया। विश्वामित्र जी कहे महाराज बच्चा है, आप अपने बड़प्पन पर विचार कीजिए, बाल दोष गुण गनई न साधु, बच्चा कुछ भी करता है, माँ की गोद में बच्चा हाथ पैर मारता है तो बच्चे के अपराध को माँ सहती है, दूध पीता हुआ बच्चा यदि माँ के शरीर में तकलीफ पहुंचाता है तो माँ सहती है, इसीलिए वो माँ है, इसीलिए वो बड़ी है। क्यों? वो अपराध सहती है इसलिए। महाराज अपराध कर दिया बच्चे, छोड़ दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं क्या माफ करे, खर कुठार, मेरे हाथ में इतना ये तीखा फरसा और बिना कारण क्रोध करने वाला मैं, और आगे अपराधी गुरुद्रोही अपराधी खड़ा हुआ है और वो मेरे सामने उत्तर दे रहा है और उसको मैं मार नहीं रहा हूं। इन सब बातों के अंदर हे विश्वामित्र जी, आपका शील स्वभाव ही देख रहा हूं, नहीं तो इनको मारे बिना मैं छोड़ नहीं सकता, और गुरु का मेरे ऊपर ऋण है, उस ऋण को मैं आज उतार देता। विश्वामित्र जी मन में सोचने, क्या समझाए अब इनको। अयमय ऊख न खांडमय, एक तो खांड होती है गन्ने की बनी हुई जो अपन लोग मिठाई में खाते हैं, ये गन्ने वाली खांड को जानते हैं, लोहे से बना हुआ जो खांडा है उसको नहीं जान रहे हैं। ये लक्ष्मण जी मामूली है क्या? शेषनाग है, शेषनाग। गादी सुनु कर हृदय हसी, हृदय में बोल रहे हैं, मुनि ही आरि आरयन सूझ, इस मुनि को अभी कुछ सूझ नहीं रहा है। अयमय खांड न ऊखमय अजहु न बूझ अबूझ, अभी भी क्या बताए, ये जानते हुए भी इनको नहीं जान रहे, क्या बताए। ये तो है विश्वामित्र जी, बात लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा आपके ऊपर गुरु जी का ऋण बढ़ा हुआ है, ओहो हमें तो पता ही नहीं है। आपके ऊपर तो माँ बाप का भी तो ऋण है ना, वो माँ बाप का ऋण चुका दिया आपने। माँ तो पिता ही उन भय नी के, और गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, माता का ऋण तो उतार ही दिया, माता का गड़ा आपने काटा था वो तो ऋण उतार दिया। बाप ने कहा था कि जाओ परशुराम माँ का गड़ा काट दो, काट दिया। भाइयों को मार दो, मार दिया, और कहा कि इनको जिला दो, कि जिला दिया। उनका तो ऋण आप पूरा कर दिया, अब गुरु का ऋण है, ओहो। और वो गुरु का ऋण हमारे मारने से हमारे माथे पर आपने ला करके रख दिया, तब तो कितना ब्याज हो गया होगा। तो किसी अच्छे ब्याज बट्टा करने वाले व्यक्ति को बुलाओ और आज तक का हिसाब ले ओ, और मैं थैली खोल देता हूं और आप अभी जो है आपका हिसाब कर देता हूं। ऐसे लक्ष्मण जी महाराज बोलने लगे, आप मुझे बार बार ये फरसा दिखाते हैं। महाराज अभी तक आपको कोई योद्धा मिला नहीं है, द्विज देवता घरई के बाढ़ है। ये द्विज है, ब्राह्मण है, देवता है ना, इनकी अपने ये अपने घर में ही पूजे जाते हैं, दूसरी जगह जाए तो पता चले इनको ब्राह्मण है। ऐसा हाँ साहब, धोक देवा ब्राह्मण है, संत है, साधु है, भाई सिंथल में हो जाना लोग साधु साधु करे है, दूसरी जगह जाओ तो मोडो मोडो बोल ही, कोई रोटी भी खिलाई नहीं। तो ये अपने घर में ही ठीक ठाक है, वहीं तक इनकी पूजा होती है, बाहर जाओ तो पता चले। मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े, तुमको अभी तक कोई लड़ाई करने वाला मिला नहीं है महाराज, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, धमकाते हो, आपको विचार नहीं आता आप क्या बोलते हो। लोग कहने लगे, अरे ये लक्ष्मण तो बड़ा अनुचित बोलता है, हर बात का जवाब देता है। राम जी ने लक्ष्मण इशारा किया, सह नहीं लखनऊ ने वाले, केवल सैन इशारा कर दिया, इशारा किया तो भाई फिर उसके बाद राम जी महाराज बहुत शीतल वचन, ठंडे वचन बोलने लगे। राम जी महाराज कहने लगे, नाथ देखो, अब राम जी महाराज भी नाथ से शब्द चालू करते हैं, नाथ करहू बालक पर छो, पहले भी नाथ से ही बोले, अभी भी नाथ से, दूसरी बार राम जी बोल रहे, हे नाथ बालक के ऊपर क्षमा कीजिए, छो मन क्षमा कीजिए, ये तो बड़ा सीधा है, दूध मुख बालक है, सूद दूध मुख करियन कोहू, इसके ऊपर क्रोध करने की कोई जरूरत ही नहीं है। महाराज ये कोई आपका प्रभाव जानता होता तो आपके सामने लपड़ लपड़ थोड़ी करता, और ये छोटे छोटे बच्चे कोई अचगरी करते हैं, चंचलता करते हैं, तो माता पिता तो आनंद में भर जाते हैं, इसलिए आप जो है अपना सेवक मानिए, आप इसको अपना बच्चा मानिए, आप इसकी बात से हट जाइए और आप अपने स्वयं की जो धीरता गंभीरता शालीनता है उसमें आप अपने में स्थित हो जाइए। तो राम जी महाराज के वचनों सुनकर थोड़े से शांत हुए। लक्ष्मण जी यू है इतना सा किया, मुस्कुराए, देखो क्या बोलते हैं, ये कोई धीर है, गंभीर है, ज्ञानी है। कई कछु लखनऊ बहुरी मुस्काने। लक्ष्मण जी ने थोड़ा सा तिरस्कार किया, वापिस भड़क गए। ए राम, तेरा भाई बड़ा पापी है, सुंदर गौर शरीर, लेकिन इसका मन बड़ा काला है, जैसे कोई सोने का पात्र हो और उसके ऊपर उसके अंदर जहर रखा हुआ और ऊपर से दूध रख दिया हो। काल कूट मुख पाए मुख नाई। देखो ये तुम्हारा भाई कैसे नेत्र टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देखता है। नीच मीच सम देखन मोही, ये इतना नीचा है, ये मृत्यु को नहीं देख रहा है। मेरे पास शस्त्र है, मैं इसको मार सकता हूं, मृत्यु को नहीं देख रहा है। लक्ष्मण जी जोर से बोले, परशुराम जी महाराज, क्रोध पाप का मूल होता है, विचार करो, थोड़ी देर का क्रोध सारे जीवन को बिगाड़ सकता है, मनुष्य बहुत बड़ा अनुचित काम कर लेता है, इसलिए क्रोध हटाओ। आपके बाबा हम अनुचर हैं, सेवक हैं, पैर पड़ते हैं, पर क्रोध मत कीजिए। और यदि आपको धनुष बहुत ही प्यारा है, इतना ही प्यारा है, टूट तो गया ही, होना सा तो हो गया, अब क्रोध से क्या होगा, क्रोध से कोई धनुष टूटने वाला नहीं है, बुला लो किसी अच्छे कारीगर को और उसे ला करके इसको जुड़वा दो, और तो क्या कर सकते हो आप, इतना क्रोध करके क्या फायदा कर लोगे। लोग कहने लगे कि भाई ये लड़का तो ये बच्चा तो बहुत जो है अनसंत बोलता है, छोटा बच्चा है लेकिन इसमें बड़ी भारी खोट है। इस प्रकार की निर्भय वाणी सुनकर के और राम जी की ओर देख करके बोले, ये राम ये क्या है। बोले रामई दे निहोरा, बचो बिचारी बंधु लघु तोरा। ये राम तू तो ऐसे बोलता है और मैं तेरा छोटा भाई समझ करके इसको बचा रहा हूं, लेकिन ये बात अच्छी नहीं हो रही तुम मेरे साथ में। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विसरस भरा कनक घट जैसे। तो फिर लक्ष्मण जी महाराज फिर हंसे हो, तो राम जी महाराज ने अब मना कर दिया और राम जी महाराज अब गए पास में। अब तीसरी बार बोल रहे हैं, सुनो नाथ, फिर भी नाथ बोल रहे हैं वो नाथ, हे नाथ। ये नाथ का अर्थ क्या होता है, नाथ का अर्थ होता है स्वामी। ये स्वामी बोल रहे हैं, स्वामी का अर्थ क्या है। परशुराम जी महाराज को बोलते, परशुराम जी महाराज आपका अवतार भी वही है, मेरा भी अवतार वही है, आप मुझसे पहले आए हो, मैं आपके बाद आप ही के रूप में आया हुआ हूं। विष्णु अवतार है परशुराम जी, विष्णु अवतार राम है। तो सुनऊ नाथ, नाथ संबोधनु, नाथ करो बालक पर छऊ। तीसरी बार का सुनऊ नाथ, तुम सहज स्वभाव। ये नाथ सब जो है राम जी महाराज बोलते बोलते जब परशुराम जी को नाथ ही बोल रहे हो, आप हमसे बड़े हो महाराज, पहले आए हो, आप विचार करो कि आप कौन है और हम कौन है, बात तो ये बताना चाहते हैं। और कहते हैं महाराज आप तो ये अच्छी तरह से जानते हो कि बच्चों की बात को कोई कान में रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि बर्रे और बालक एक स्वभाव, टांटिया होता ना, टांटिया, बर्रे माने टांटिया, वो टांटियों को आप यूं छेड़ो, यूं छेड़ टांटिया वापिस इधर ही आएगा, और यूं करके टांटिया तो आप कुछ मत करो, टांटिया चला जाएगा यूं, और उसकी तरफ यूं यूं करो वापिस उधर ही आएगा, ये स्वभाव है। तो बर्रे और बालक, टांटिया और बालक, इनका एक जैसा स्वभाव है। बालक को आप यूं धमकाओ, चुटकी बजाओ, आपकी तरफ आएगा, बालक के साथ खेलो तो आपके पास आएगा, बालक से आप माथा लगाओ तो बालक आपके पास आएगा। तो इना इना संत विदुषी काहू, ज्यादा इनको मुंह नहीं लगाते, सज्जन आदमी है महाराज। सच्ची बात तो यह है, इसने तो कुछ बिगाड़ा नहीं है, हे नाथ अपराधी तो हूं जो मैं हूं, अब चाहे आप क्रोध करो चाहे आप कृपा करो, आपके हाथ की बात है। आप ऐसा करो, ये क्रोध खत्म करो, ये क्रोध सबसे खराब चीज है महाराज। कैसे हम क्रोध खत्म करें, जब तक इसके कंठ के ऊपर ये कुठार का प्रहार नहीं करूं तो फिर मेरा क्रोध करने का अर्थ ही क्या हुआ, क्या अर्थ हुआ बताओ। मेरे क्रोध को समझते नहीं हो राम। गर्भ श्रवई अवनी पर रमनी, बड़े बड़े राजाओं की रमणियां थी, उनके गर्भ मेरे क्रोध करते ही गिर जाया करते थे। मेरा क्रोध कभी व्यर्थ नहीं होता है। बह ही न हाथ, मैं तो आश्चर्य कर रहा हूं कि आज हो क्या गया मेरे क्रोध को। बह ही न हाथ, हाथ मेरा चल नहीं रहा है और छाती मेरी अंदर से जल रही है और ये कठोर कठोर ये फरसा है, ये कुंठित होकर के कैसे खड़ा है। भयउ बाम विधि फिरेउ स्वभाव, मेरा स्वभाव आज बदल कैसे गया है। मेरे हृदय में कृपा और दया नाम की चीज नहीं, वो कैसे पैदा हो रही है। आज इस दया ने मुझे बहुत दुख दिया है। लक्ष्मण जी, अच्छा आप और दया, वाह 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 वाह, बाहु कृपा मूर्ति अनुकूला, आप तो कृपा की मूर्ति हो महाराज। बड़ी अनुकूल वायु बह रही है और ऐसी वायु बह रही है कि कृपा के अंदर आपके वचन ऐसे हैं जो बढ़िया बढ़िया फूल गिरा रहे हैं। आपके वचनों से तो बढ़िया फूल गिर रहे हैं महाराज। जब आप कृपा के अंदर ऐसी बात बोलते हो, जब कभी आपने क्रोध किया होगा उस समय आपका शरीर धरती पर था कि नहीं। क्रोध भय तनु राख विधाता, उस समय आपका शरीर रहा ही नहीं होगा, क्रोध के अंदर जल गया होगा। ए जनक, ये बालक अब यमपुर में जाएगा, देख लेना, जल्दी से जल्दी इसको मेरी आंख से हटाओ, नहीं तो ये राजकुमार आज मेरे हाथ से मारा जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारा इसमें कौन सी बड़ी बात, मैं हटूं इसकी अपेक्षा तो आप आंख ही बंद कर लो। नहीं, ये हम हट गए, मुंदे आंख कतौ को नहीं। तब परशुराम जी महाराज क्रोध करके बोले, अब दूसरे ढंग से बोलते, शंभु सरासन तोरी सटकर से हम आए राम। अब मैं, अब लक्ष्मण से तो माथा हटाना लगाना छोड़ दिया, राम जी तू देख लिया को भी, तू भी तेरे भाई के समान बड़ा कटु बोलने वाला है, ऊपर से तो मीठा बोलता है, तू छल विनय कर सी कर जो हाथ पड़ता है, मीठा मीठा बोलता है और तेरे अंदर भी तेरे भाई के समान कपट भरा पड़ा है। छलुता जी करई समरु शिव द्रोही, तू शिव जी के साथ द्रोह करने वाला है, छल को छोड़ो और मेरे साथ युद्ध करो। बंधु सहित न तुम मारो तो ही, नहीं तो तुम दोनों भाइयों को मैं मारने वाला हूं। तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर शब्द बोलते हैं कि भृगुपति बक ही कुठार उठाए। भृगुपति परशुराम जी बक रहे, ये बकना कैसे होता है, अपने मारवाड़ी शब्द है, व्यर्थ जो बोलता है वो बकना मानते हैं, फालतू बके है। कोई पागल आदमी बोले फालतू बके है, ये बकना शब्द है ना, ये अपने मारवाड़ी शब्द है। तुलसीदास जी महाराज ने भारतवर्ष की सब भाषाओं का कोई न कोई शब्द लिया ही है, कोई नहीं कह सकते कि हमारा शब्द तमिल शब्द इसमें है, तेलुगु शब्द इसमें, सबके शब्द है। भृगुपति बकई कुठार उठाए और मन मुस्काए राम सिर नाए। राम जी महाराज मन में मुस्कुराए और राम जी महाराज सोचते हैं कि भाई अब सीधी सीधी बात करें तो देखो सब सीधे आदमी के ऊपर लागू पड़ जाते हैं। ये चंद्र ग्रहण आता है किस दिन आता है, पूनम के दिन ही आता है, क्योंकि पूनम के दिन चंद्रमा टेढ़ा नहीं होता है। एकम के दिन आओ देखें गले में अटक जाए उसको, वो जो राहु है वो टेढ़ा यू कर ले ना चंद्रमा, वो गले में अटक जाएगा वो, लेकिन गोल होता है सीधा होता है वो चंद्रमा, अटके कहां, इसलिए वक्र चंद्रमा ही ग्रसई न राहु, सीधा सीधा चंद्रमा होता है, राहु उसको पकड़ता नहीं है, नहीं तो टेढ़ा होता उसमें कोई नहीं आना। और टेढ़ जान बन नहीं सबका हो, और जब चंद्रमा टेढ़ा होता है अमावस के बाद एकम दूज तीज को, जब दूज तीज को चंद्रमा आता है सब हाँ साहब चंद्रमा के दर्शन हो गए। राम जी ने कहा महाराज ये क्रोध छोड़िए, ये आगे तो मेरा ये मैं आपके सामने सिर रख रहा हूं, आपके हाथ में कुठार है, अब क्रोध छोड़ दीजिए, क्रोध अच्छी चीज नहीं है। ऐसे करके वो बार बार कहने लगे कि महाराज इस बच्चे का कोई दोष नहीं है, वंश स्वभाव उतरते ही दीना, इसने तो अपना वंश समझ करके आपको उत्तर दिया है, अपराध हो गया क्षमा हो गया, वो अपराध का क्षमा कर दीजिए। हमें तुम्हें सर्वरी कसी नाता, सर्वरी माने बराबरी, आपकी हमारी कोई बराबरी तो है नहीं, हम तो हैं आपके आप आपके तो चरण और हमारे माथा महाराज बराबरी का हो। देखो अब देखो राम जी महाराज बहुत गुड बात बोलते हैं, राम मात्र लघु नाम हमारा और परुष सहित बड़ नाम तुआरा। आपका नाम तो परशुराम है, मेरा नाम राम है, मेरे धनुष में तो एक गुण है और आपके धनुष में नौ गुण है। नौ गुण माने ब्राह्मण के अंदर नौ गुण होते हैं, समो दमस तप शौचम शांतिरार्जव एवच ज्ञानम विज्ञान मास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, गीता में नौ बताए। अब यहां ध्यान से सुनना कि ब्राह्मण के आप तो ब्राह्मण हो, आपके अंदर नौ गुण है और देव एक गुण धनुष हमारे, तो यहां भगवान को ये कहना चाहिए कि हम क्षत्रिय हैं तो हमारे अंदर सात गुण है, तो सात गुण कहने चाहिए क्योंकि शौर्यम तेजो धृतिर दाक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शौर्यम तेजो धृतिर दाक्ष्यम, शौर्य धैर्य इत्यादि सात गुण होते हैं क्षत्रिय में, पर वो न करके कहते हमारा तो एक और आपके नौ, अर्थात आप नौ से परिपूर्ण, मैं एक से परिपूर्ण, मैं एक और आप नौ, तो संख्याओं में सबसे बड़ी नौ होती है, नौ जो संख्या है सबसे बड़ी संख्या। कितने से ही गुणा करो नौ का नौ होता है, आप भी पहचानो कि आप कौन है और मेरे को भी पहचानो कि मैं कौन हूं। बार बार मुनि विप्रवर, बार बार उनको ब्राह्मण मुनीर विप्र ऐसा कहा, अभी भी वो समझे नहीं। हमको केवल तुमने ब्राह्मण समझ रखा है, हम कोई मांग खाने वाले ब्राह्मण थोड़े ही है, हम तो ऐसे ब्राह्मण है जिसको तुम्हें समझना ही बड़ा कठिन है। हमारे पास धनुष ये श्रुवा है, सर है ये आहुति है, हमारा क्रोध ही आग है, सेनाएं ये संविधाएं है, बड़े बड़े राजा लोग है ये पशु है, और इनको जो परसों से काट काट करके मैं बलि दिया करता हूं, उससे मैं यज्ञ करता हूं, जानते नहीं तुम मुझे। अब राम जी महाराज कहे, महाराज अब आप हमारी बात सुनिए, हमारी तो बहुत छोटी सी गलती थी, आप उसके लिए इतना बड़ा क्रोध कर रहे हो, रिस अति बड़ी लघु चूक है हमारी। ये पुराना शिवजी का धनुष था, पुराना पुराना माने अनादिकाल का, शिवजी भी अनादिकाल के, शिवजी के आयुध भी अनादिकाल के, हम भी अनादिकाल के। आप सोचो तो सही, ये धनुष कौन तोड़ सकता है और किसकी मर्जी से टूट सकता है? ये शिवजी की मर्जी से टूटने वाला धनुष है। मैं कई हेतु करो अभिमाना, मैं किस कारण से अभिमान करूं? देखो महाराज, हमारे विषय में भी सुन लो, देव धनुज भूपति भट नाना समबल अधिक हो बलवाना। हमारे सामने देवता आ जाओ, मनुष्य आ जाओ, राक्षस आ जाओ, बड़े बड़े राजा लोग आ जाओ, हम इनसे कुछ डरने वाले नहीं है, हम खूब आराम से लड़ने, लड़ाई सुखेन कालू किनु, काल आ जाओ, काल समय आ जाए। अर्थात परशुराम जी आप क्रोध दृष्टि हटाओ और भक्ति दृष्टि से देखो, भक्ति की दृष्टि, हम कालातीत हैं, लड़ाई सुखेन काल किन हो, काल भी आ जाए तो हम उससे हारने वाले नहीं, अर्थात हम मृत्यु से मरने वाले नहीं, कालातीत हैं। देवता धनुज मनुष्य कोई भी आ जाए, इनसे हम हारने वाले नहीं। आप समझो कि हम कौन है, हम तो केवल क्षत्रिय का शरीर धारण करके आए, क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना कुल कलंक ते पावर आना। हम तो केवल क्षत्रिय का शरीर धारण किए, इतनी बातें हम आपको कहते हैं ना, ये कोई कुल की प्रशंसा के लिए नहीं कहते हैं कि रघुवंशी काल से डरते नहीं, इस दृष्टि से नहीं कह रहे हैं, हम वास्तविकता से कह रहे हैं कि हम कालातीत हैं। विप्रवंश के असी प्रभुताई, महाराज ब्राह्मणों की तो यही है कि जो ब्राह्मणों से डरता है वो अभय होता है, वो चाहे कितना भी निर्भय प्राणी हो ब्राह्मणों से तो डरता ही है। हम तो केवल एक मर्यादा को रख रहे, क्षत्रिय शरीर धारण किया इसलिए, लेकिन हम काल से डरने वाले नहीं, गहराई से देखो हम कौन है। तो सुनी मृदु गूढ़, भगवान के कोमल और गूढ़ वचनों को सुनकर के उधरे पटल परस उधरी मति के, उनकी बुद्धि के ऊपर जो पर्दा आया हुआ था वो पर्दा परशुराम जी महाराज का हटा। पर्दा हटने पर कहा राम रमापति कर धनु ले ओ, हे राम ये रमापति का धनुष ले जाओ, लो इसको ऊपर चढ़ाओ देखे तुम। अब देखो गहराई से, शिवजी का धनुष टूटा तो परशुराम जी क्रोध करने लगे, और अब कहते हैं कि विष्णु का धनुष है, ये विष्णु का धनुष देता हूं इसके ऊपर प्रत्यंता चढ़ाओ। तो बड़ा रहस्य हो, राम रमापति कर धनु ले, ये लो ये धनुष देता हूं मैं तुमको। यो धनुष उतारने लगे तो देत चाप, यो धनुष उतारने लगे तो वो धनुष है ना अपना आप ही चलने लगा, जैसे आप हम चलते ना ऐसे अपना आप ही चलने लगा। और परशुराम मन विस्मय भय, अरे हम तो इस धनुष को यूं उठाते हैं यूं रखते हैं, हमारे पास तो धनुष कभी चलता ही नहीं, इनके पास तो यूं कदम रख रख के चल रहा है। धनुष में जो चिन्मयता है वो कब आती, भगवान के आयुधों में चिन्मयता कब आती है, जब वो भगवान के संपर्क में होते हैं। भगवान के संपर्क में आते ही गदा भी चिन्मय हो जाती है, बोलने लगती है। सुदर्शन चक्र है ये भी बोलने लगता है, सुनने लगता है। इसीलिए भागवत में देखो सुदर्शन चक्र है, उसके सामने स्तुति की है अम्बरीश ने, वो शांत हो गया। ये भगवान के आयुध बड़े चिन्मय है। तो देत चाप आप ही चली गए हो, और परशुराम मन विस्मय भय हो, विस्मय हो गया, बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेम अमात। अब इतने प्रसन्न हुए परशुराम जी महाराज, अरे राम का प्रभाव, तो साक्षात विष्णु भगवान है। प्रेम से बड़े प्रफुल्लित हो गए और हाथ जोड़ करके खूब जय जयकार करने लगे। कहा हे महाराज आप रघुवंश रूपी कमल वन के सूर्य हो, आप राक्षस कुल रूपी जंगल को जलाने वाली आग हो, आप देवताओं विप्र ब्राह्मणों और गायों के हितकर हो, काम क्रोध को आप मारने वाले हो, अपने सेवकों को आप सुख देने वाले हो, करुणा के सागर हो, हे महाराज आपकी जय हो, आपकी जय हो। क्या बताएं महाराज, मैंने आपको बहुत अनुचित शब्द कहे, मेरा बड़ा भारी अपराध, अकहू अज्ञाता, इतनी देर तक मुझे मालूम ही नहीं था कि आप कौन है, अब मुझे ज्ञान हुआ। क्षमा क्षमा मंदिर दौ भ्राता, कही जय 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 रघुकुल केतु। परशुराम जी महाराज है ना, ये लक्ष्मण जी शेष नाग है, अब पता चला ये शेष नाग है। परशुराम जी महाराज है ये जान गए कि शेष नाग तो ये है, ये विष्णु भगवान ही है, और हम तो एक इनकी कला अवतार है, पूर्ण अवतार है। देखो भगवान कहीं अपनी कला से अवतार लेते हैं, कहीं कैसे करते हैं, कहीं कैसे करते हैं। डॉक्टर के पास वैद्य के पास कोई जाए कि साहब वैद्य जी महाराज हमारे लड़के की ये तकलीफ, अच्छा ये तकलीफ है ये दवाई ले जाओ, और एक बार खुद वैद्य जी जाकर खुद देखते हैं दोनों में फर्क है। ऐसे ही भगवान को खुद को अवतार लेना होता है, पूर्ण अवतार तो राम है कृष्ण है पूर्ण अवतार, नहीं तो अंशा अवतार, कहीं कहीं थोड़ा सा अपनी शक्ति भेज देते हैं। तो परशुराम जी महाराज है ये भगवान की एक शक्ति अवतार है, ये राम जी पूर्ण अवतार है। इसलिए करो का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। नो बार जय बोले, ये नो बार जय, क्योंकि दो बार इन्होंने कठोर वचन कहे थे। बड़ा आनंद हुआ, वो प्रणाम करके परशुराम जी महाराज तपस्या करने के लिए वन में चले गए। क्यों गए कि तपस्या तो हमने बहुत की, अब भगवान की भक्ति रूप तपस्या करनी, वो भक्ति करने के लिए चले गए। सब लोग वहां स्तब्ध रह गए, आनंद के अंदर सब डूब गए। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय
सीताराम। जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम
जय सीता जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम
जय सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता
सियावर राम चंद्र की
जय
मोर मुकुट वंशी वाले
जय
अनंत श्री हरि राम दास जी महाराज
की जय
अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की
जय